بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے آدرنیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کیجیے۔ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پویتر قرآن کے سورہ حجرات کی چھٹی اور ساتویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم۔
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، یدی کوئی ادھرمی کوئی خبر لے کر آئے تو چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گٹ کو انجانے میں کوئی ہانی پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشچاتاپ ہو۔ اور جان لو کہ تمہارے بیچ ایشور کے پیغمبر موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ یدی پیغمبر ان میں تمہارا کہا مان لیا کریں तो उल्टे तुम ही कठिनाई में पड़ जाओ, परंतु ईश्वर ने तुम्हें ईमान का प्रेम दिया है और उसे तुम्हारे हृदयों में सजा दिया है, और कुफ्र उल्लंघन और अवज्ञा को तुम्हारे लिए अप्रिय बना दिया है, और ऐसे ही लोग ईश्वर के अनुग्रह और उपकार से सही मार्ग पर हैं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर रेडियो तेहरान आप सबकी सेवा में हार्दिक बधाई पेश करता है। आज बुधवार है, जमादि सानी की 30, फरवरी की 2 और बहमन की 13 तारीख। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट करने से पहले आप ये सुन लें कि हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। हमारे कार्यक्रम की से संपर्क करने के लिए पत्र व्यवहार के हमारे पते नोट कर लें। हमारा पता है ईमेल एड्रेस hindi@ws.iribi.ir। तो श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आपसे सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात आप राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे, उसके पश्चात आप इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के जन्म दिवस के संबंध में हमारा विशेष कार्यक्रम सुनेंगे, और सभा के अंत में आप सुनेंगे स्वतंत्रता प्रभात के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی اپنے منتری منڈل کے ساتھ سورگیہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر حاضر ہوئے۔ امریکہ کے پورو راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو بائیڈن کے نیتروتو میں امریکہ ختم ہو جائے گا۔ چینی راجدوت نے کہا کہ تائیوان کو لے کر امریکہ اور چین کے مدھیے یدھ ہو سکتا ہے۔ ولادیمیر پوتین نے کہا کہ واشنگٹن یوکرین کے مادھیم سے روس کو نیتروتو کرنے کی چیشٹا میں ہے۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी अपने मंत्रिमंडल के साथ देश के राष्ट्रपिता की मजार पर हाजिर हुए। इस्लामी क्रांति की 43वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्वर्गीय इमाम खोने रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खोने रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। 43 साल पहले 1 फरवरी 1979 को स्वर्गीय इमाम खुमैनी 14 वर्षों के निष्कासन के बाद स्वदेश वापस आए थे, जिनका जनता ने हार्दिक स्वागत किया था। इमाम खुमैनी के ईरान में प्रवेश के 10वें दिन अर्थात 11 फरवरी 1979 को इस्लामी क्रांति सफल हुई थी। इस बात के दृष्टिगत ईरान में 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच के दिनों को स्वतंत्रता प्रभात के नाम से मनाया जाता है। इस दस दिनों के दौरान पूरे ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के उपलक्ष में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डेमोक्रेट्स विद्रोह के प्रयास थे और वे हमें व्हाइट हाउस से बाहर करना चाहते थे। यहां तक कि मेरे व्हाइट हाउस में प्रवेश करने से पहले ही वे जाली अध्ययन करा के मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने बाइडेन सरकार की नीतियों की आलोचना की और दोबारा राष्ट्रपति बनने के कारणों के बारे में कहा कि बड़ी सीधी सी बात है, हमारे देश का पतन हो रहा है और हमारा क्रियाकलाप असाधारण था। डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी 2020 को अमरीकी कांग्रेस पर होने वाले हमले के बारे में कहा कि इस समय होने वाली जांच पड़ताल और विरोधी पार्टियों की ओर से होने वाले हमले कोई नई बात नहीं है। वो विद्रोह करवाना चाहते हैं और व्हाइट हाउस से मुझे मेरे कार्यालय से बाहर निकलवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जाली जांच पड़ताल के माध्यम से वे व्हाइट हाउस में हमारे प्रवेश से पहले हमें आघात पहुंचाने की चेष्टा में थे और वे हमेशा ये कार्य अंजाम दे रहे हैं और हमेशा ये काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा देश पतन की ओर अग्रसर है और हम अमरीका को बड़ा व महान देश बनाना चाहते हैं। मैं मुस्कुराता हूँ, परंतु मुस्कुराने के लिए कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे देश की हालत बुरी से बुरी होती जा रही है।
अमेरिका में चीन के राजदूत ने चेतावनी दी है कि ताइवान पर बीजिंग और वाशिंगटन के मतभेद युद्ध का कारण बन सकते हैं। किन कांग ने वाशिंगटन में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्रवाइयों के परिणाम में ताइवान के अधिकारी दुस्साहसी हो जाते हैं तो फिर अमेरिका के साथ हमारी सैन्य झड़प की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। इससे पहले भी चीन ताइवान को लेकर अमेरिका को कई बार सचेत कर चुका है। अमेरिका में मौजूद चीन के राजदूत ने इसके साथ ये भी कहा है कि उनका देश संकट के शांतिपूर्ण समाधान का इच्छुक है। ज्ञात रहे कि नवंबर 2021 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को संबोधित करते हुए कहा था कि जो भी ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करेगा वो आग के साथ खिलवाड़ करेगा। उल्लेखनीय है कि बीजिंग ताइवान को अपना अटूट हिस्सा मानता है। यही कारण है कि अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार बेचने और उकसाने वाली कार्रवाई को बीजिंग चीन की संप्रभुता के विरुद्ध मानता है। हालांकि अमेरिका लगातार ताइवान की सैन्य सहायता कर रहा है, जिससे चीन बहुत नाराज है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका और उसके घटक यूक्रेन को बराबर हथियार बेचकर क्षेत्र में संकट को हवा दे रहे हैं। कई वर्षों से अमेरिका यूक्रेन को हथियार बेचकर रूस के विरुद्ध यूक्रेन की सेना को लस कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को एक भाषण में कुछ पश्चिमी देशों के साथ उत्पन्न होने वाले तनाव की ओर संकेत किया और कहा कि अमेरिका और नाटो ने रूसी चिंता की अनदेखी कर दी है। उन्होंने कहा कि रूस निकट से इस बात पर पैनी नजर रखे हुए है कि उसके प्रस्तावों का अमरीका और नाटो क्या जवाब देते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने हंगरी के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर बल देकर कहा कि मॉस्को पूर्व की ओर नाटो के विस्तार का विरोधी है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन रूस को जंग में घसीटकर मॉस्को के खिलाफ और प्रतिबंध लगाने की चेष्टा में है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पिस्कोव ने भी सोमवार को अमरीका से मांग की थी कि वो यूक्रेन के आसपास तनाव को हवा देना बंद करे। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि अमरीकी संचार माध्यम हालिया महीनों में ऐसी बहुत सी खबरों को प्रकाशित कर रहे हैं जो झूठी हैं, उनमें हेराफेरी कर दी गई है और जो कुछ यूक्रेन और उसके पास हो रहा है उसके संबंध में भड़काऊ व उकसाने वाली खबरें दे रहे हैं। रूस ने बारंबार कहा है कि वो यूक्रेन पर हमले का इरादा नहीं रखता है। इसके बावजूद अमरीका और यूरोपीय देशों ने अपनी सैनिक तत्परता में वृद्धि कर दी है और कुछ देशों ने रूस के संभावित हमले से मुकाबले के लिए अपने सैनिकों और सैन्य संसाधनों को यूक्रेन भेज दिया है।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। उत्तरी कोरिया द्वारा हालिया मिसाइल का परीक्षण करने के बाद वाशिंगटन और टोक्यो ने इसे पूरे विश्व के लिए खतरा बताया है। स्पुतनिक समाचार एजेंसी के अनुसार जापान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि उत्तर कोरिया द्वारा हालिया दिनों में किए गए मिसाइल परीक्षणों के संदर्भ में जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने विचार विमर्श किया है। दोनों पक्षों ने उत्तरी कोरिया के मिसाइल परीक्षणों को विश्व विशेषकर कोरिया प्रायद्वीप और जापान के लिए गंभीर खतरा बताया है। इस बयान के अनुसार जापान अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के बीच निकट सहयोग करके उत्तरी कोरिया के निशस्त्रीकरण पर सहमति बनी है। इसी बीच कूटनैतिक सूत्रों का कहना है कि उत्तरी कोरिया द्वारा किए गए हालिया परीक्षण के दृष्टिगत अमेरिका ने राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद से इस बारे में आपात बैठक आहूत करने की मांग की है, जो संभवतः गुरुवार को होगी। दूसरी ओर दक्षिणी कोरिया ने दावा किया है कि इस बात की प्रबल संभावना पाई जाती है कि उत्तरी कोरिया अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है।
तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीदारी का मामला तुर्की का आंतरिक मामला है और इससे नाटो का कोई संबंध नहीं है। समाचार एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने अगस्त 2021 में कहा था कि अंकारा रूस से S-400 की दूसरी खेप की खरीदारी में संकोच से काम नहीं लेगा।
फिलिस्तीनियों के विरुद्ध ज़ायोनी शासन के अत्याचार जारी हैं। इन्हीं अत्याचारों को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ज़ायोनी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है। फार्स न्यूज़ के अनुसार हमास के मीडिया प्रभारी हिशाम कासिम ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये प्रयास सराहनीय है कि फिलिस्तीनियों के विरुद्ध ज़ायोनी शासन के अत्याचारों की एक लिस्ट तैयार करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 59% इसराइली इसराइल छोड़कर भागना चाहते हैं। ताज़ा सर्वेक्षण बताते हैं कि बिगड़ती आर्थिक स्थिति, फिलिस्तीनी संकट के समाधान और अपने भविष्य के प्रति निराश होकर बहुत से इसराइली वहां से कहीं और जाना चाहते हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे ईरान के खिलाफ एक बार फिर अमेरिका द्वारा लगाए गए बेबुनियाद आरोपों के बारे में।
अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता ने,
और फिर बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव समाप्त हुए 15 महीनों के बाद भी इस देश में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बारे में।
Today was a dark day in the history of the United States Capitol.
और अंत में चलेंगे भारत, जहां उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर दिन प्रतिदिन चल रहे राजनीतिक पारे के बारे में हमारे संवाददाता आपको बताएंगे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों के चुनावी अभियान के साथ साथ
तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान की रणनीतियों के आगे पूरी तरह ढेर हो चुके अमेरिका ने एक बार फिर तेहरान के खिलाफ जहर उगला है। पेंटागन के प्रवक्ता ने ईरान को कुछ क्षेत्रीय देशों के लिए खतरा बताया है। इस संबंध में विस्तार से एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी अख्तर अब्बास।
अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता ने एक बार फिर क्षेत्र में ईरान की नीतियों के संबंध में बेबुनियाद दावों को दोहराते हुए कहा है कि ईरान क्षेत्र के कुछ देशों के लिए खतरा बना हुआ है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन करबी ने ईरान को क्षेत्र के कुछ देशों के लिए खतरा बताते हुए अमेरिकी नौसेना और उसके सहयोगी देशों के बीच जारी सैन्य अभ्यास की ओर इशारा करते हुए कहा कि केवल हम ही नहीं बल्कि हमारे सहयोगी भी इस खतरे से निपटने के लिए तैयार रहें। करबी ने अपने बेबुनियाद दावों को जारी रखते हुए कहा कि सैन्य अभ्यास बहुत ही अलग तरीके का है। इस अभ्यास के जरिए हम ये संतुष्टि हासिल करना चाह रहे हैं कि ईरान की तरफ से पैदा हुए खतरों से मुकाबला करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि नहीं। अमेरिका वर्षों से ईरानोफोबिया की रणनीति अपनाए हुए है। इस स्ट्रेटेजी के तहत ईरान को हाशिए पर रखना, क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय बातचीत को बाधित करना, ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने के लिए एक गठबंधन बनाना, फारस की खाड़ी के भू सामरिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति जारी रखना, साथ ही ज़ायोनी शासन के हितों को सुरक्षित करना और क्षेत्र के देशों को शासन के करीब लाना अमरीका के लक्ष्यों में से है। ये सब ऐसी स्थिति में है कि जब वॉशिंगटन के अधिकारी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम एशिया में अमरीकी नीतियों से सबसे ज्यादा जहां उसे नुकसान पहुंचाया है, वहीं उसके पश्चिमी सहयोगियों और क्षेत्रीय सहयोगियों का उस पर भरोसा भी कम हुआ है। विशेष रूप से अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिकों की वापसी ने इस देश की विश्वसनीयता को एक गंभीर झटका दिया है। वास्तविकता यही है कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अमेरिका की मौजूदगी, विशेषकर पश्चिमी एशिया में अमेरिका की उपस्थिति ने इन सभी इलाकों की शांति और स्थिरता को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इराक, सीरिया और अफगानिस्तान सहित कई अन्य देशों की उन देशों में गिनती होती है जहां अमेरिका और उसके सहयोगियों की उपस्थिति और हस्तक्षेप के कारण वर्षों से अशांति और अस्थिरता और आतंकवाद का तांडव रहा है। इसी बुनियाद पर इस्लामी गणतंत्र ईरान ने फारस की खाड़ी में हमेशा सामूहिक और भागीदारी सुरक्षा की नीति को अपनी मुख्य रणनीति माना है और राष्ट्रीय हितों और क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के खिलाफ विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप और उनकी गैर कानूनी उपस्थिति को क्षेत्र की शांति व स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। ईरान के दृष्टिकोण से क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा विदेशी हस्तक्षेपों के माध्यम से नहीं बल्कि आंतरिक क्षेत्रीय समाधानों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी ने 6 दिसंबर को संयुक्त अरब इमारात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तहनून बिन जायद के साथ बैठक के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा पर ईरान के दृष्टिकोण को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि क्षेत्र के देशों के बीच निरंतर संवाद और सहयोग से ही क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा स्थापित की जा सकती है। सच्चाई यही है कि अमेरिका जैसे देशों पर भरोसा करके फारस की खाड़ी के दक्षिणीय तटों पर मौजूद देशों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, क्योंकि इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति अब पहले जैसी नहीं है और क्षेत्र के राष्ट्र चाहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका उनके देशों को छोड़कर चला जाए। पश्चिम एशियाई मामलों के विशेषज्ञ असगर जारई ईरान द्वारा हमेशा फारस की खाड़ी क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा सहयोग का एक मॉडल स्थापित करने की आवश्यकता पर दिए जाने वाले बल के संबंध में कहते हैं कि दुर्भाग्य से फारस की खाड़ी के दक्षिण तटों पर मौजूद कुछ राज्यों को अपनी क्षेत्रीय व विदेश नीति में पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं है और वे अमरीका और उसके सहयोगियों द्वारा फैलाए जा रहे ईरानोफोबिया के जाल में फंस कर क्षेत्र में अशांति व स्थिरता फैलाने वालों के पिट्ठू के तौर पर काम करने लगते हैं।
और अब चलते हैं अमेरिका और बात करते हैं इस देश में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के 15 महीने बीत जाने के बाद भी मचे राजनीतिक घमासान के बारे में। ट्रंप ने जहां बाइडेन के जल्द व्हाइट हाउस से चले जाने का दावा किया है, वहीं इस देश की अदालत को भी धमकी दे डाली है। इस बारे में न्यूयॉर्क से IRIB के संवाददाता कामरान नजबजादे एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी की आवाज में।
अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को समाप्त हुए 15 महीनों का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी राजनीतिक टकराव जारी है। ट्रंप अपने सहयोगी माइक पेंस से नाराजगी जताते हुए ये कहते हैं कि वे 2020 के चुनाव के नतीजों को रद्द कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ट्रंप की धमकी यह है कि अगर अदालत कांग्रेस पर हमले के मामले में कोई भी कार्रवाई करती है तो वो अपने समर्थकों को सड़कों पर बुला लेंगे। ट्रंप ये चाहते हैं कि वो इस साल प्रतिनिधि सभा की प्रमुख नैन्सी पेलोसी के राजनीतिक कैरियर को समाप्त कर दें और पहले से ज्यादा अमेरिका अगले चुनाव में खुद के उम्मीदवार बनने के बारे में वे बातें कर रहे हैं। ट्रंप बाइडेन को व्हाइट हाउस से बाहर निकालना चाहते हैं। राजनीतिक टीकाकारों के अनुसार ट्रंप के शाब्दिक हमलों में अब तीव्रता आ गई है। ट्रंप का कहना है कि ये अच्छी बात है, साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ओलंपिक के बाद चीन और ताइवान के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप का कहना है कि बाइडेन की कमजोरी से तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को बल मिल रहा है। एक बार फिर ट्रंप लंगड़े घोड़े की तरह अमरीकी मीडिया में दौड़ते हुए दिखाई देने लगे हैं।
कामरान नजफ़ज़ादे, खबरगुज़ारी सदा व सीमा, न्यूयॉर्क।
और अब रुक करते हैं भारत का और बात करते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सर्दी के मौसम में नेताओं के पसीने निकाल देने वाली चुनावी प्रतिस्पर्धा की। दल बदल करते नेताओं के बीच टिकट कटने से हो रहे नाराज उम्मीदवारों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों के चुनावी अभियान के साथ साथ दल बदल करने वाले नेताओं को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही हैं। भाजपा ने योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल रही स्वाति सिंह को लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है, जिसके बाद उनके समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें शुरू हो गई थी, लेकिन इन अटकलों पर उस समय विराम लग गया जब स्वाति सिंह ने कहा कि वह भाजपा में ही जिएंगी और इसी पार्टी में मरेंगी।
मैंने भी कल देखा टीवी में, मैंने बताया आप लोगों को शुरुआत में ही कि जब मैं 17 साल की थी क्लास 12th में, तब मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है, मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
समझा जा रहा था कि यदि स्वाति सिंह समाजवादी पार्टी का दामन थामती हैं तो हो सकता है कि ये पार्टी उन्हें लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से अपना प्रत्याशी घोषित करे, क्योंकि सपा ने अभी तक इस सीट के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा को सरोजनी नगर सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भाजपा ने समाजवादी पार्टी से निकली अपर्णा यादव को भी लखनऊ से अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। इसी बीच भाजपा ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पूर्व संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह को, जिन्होंने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके पुत्र के मामले की जांच की थी, लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है।
पार्टी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी की विचारधारा को हमें आगे लेके जाना है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही देश का भविष्य, इसको हमें आगे और बढ़ाना है। आने वाले दिनों में गवर्नेंस में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी कर रहे हैं, उसमें उनका सहयोग देना है हमें, और संप्रदायवाद जो बढ़ रहा है उसको हमें कंट्रोल करना है।
राजेश्वर सिंह ने वीआरएस लेने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया था और फिर वीआरएस स्वीकार होने के 24 घंटे के अंदर ही उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। उनका भाजपा में जाना और प्रत्याशी बनना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उधर कांग्रेस ने भी भाजपा के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके वार्षिक बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया गया है, जिसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को बजट की समझ नहीं है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
दोस्तों, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा स्वतंत्रता प्रभात के अवसर पर पेश किए जाने वाले विशेष कार्यक्रम की एक अनकड़ी, लेकिन उससे पहले प्रस्तुत है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पौत्र इमाम मोहम्मद बाकर अलैहि सलाम के शुभ जन्म दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, पैगंबर इस्लाम के पौत्र हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मरियम मेहर दादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
अपने पालनहार से मनुष्य के सामीप्य के एक अहम साधन के रूप में रजब महीने के पहले दिन के महत्व को पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पौत्र के शुभ जन्म दिवस ने और बढ़ा दिया है। पैगम्बर इस्लाम कभी अपने उत्तराधिकारियों के बारे में कहते थे कि वे 12 होंगे और सभी कुरैश कबीले से होंगे। इसी तरह वे कभी कभी उन सभी के नामों और उनकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख भी करते थे। उन्होंने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के बारे में कहा था कि जब हुसैन का समय बीत जाएगा तो उनके बेटे अली बिन हुसैन इमामत का पद संभालेंगे और ईश्वर उन्हें एक पुत्र प्रदान करेगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा और वो हर अदृष्ट से मेरे जैसा होगा। वो अपने पिता के बाद इमाम बनेगा। दोस्तों, आप सबकी सेवा में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई पेश करते हैं।
पैगंबर के उत्तराधिकारियों या इमामों को जो मुक्ति, कल्याण व सौभाग्य की ओर मनुष्य के मार्गदर्शक हैं, अपने काल में कड़े प्रतिबंधों व घुटन के माहौल का सामना था और उनमें से हर एक किसी न किसी तरह लोगों के मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट मार्ग समतल करता था। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम बनी उमैया व बनी अब्बास के सत्ता के चरम के समय में जीवन बिता रहे थे। इन परिस्थितियों में उन्होंने कोशिश की कि एक सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से शिया मत की शिक्षाओं को एक नया जीवन प्रदान करें। इसी कारण उन्होंने एक व्यापक व लक्ष्यपूर्ण कार्यक्रम के साथ अपनी मूल कार्रवाइयाँ शुरू की।
उन्होंने उस ज्ञान को बयान करना शुरू किया जिसे पेश करने का उन्हें बरसों तक अवसर नहीं मिला था। इस तरह उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कथन की व्यवहारिक व्याख्या पेश कर दी कि इमाम व कुरान कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने उन कठिन राजनैतिक परिस्थितियों में व्यवहारिक रूप से सिद्ध कर दिया कि कुरान मजीद व ज्ञान एक दूसरे से अलग नहीं है और इमाम ही के पास ज्ञान व कुरान की सच्ची जानकारी है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के ज्ञान संबंधी आंदोलन और आज के ज्ञान संबंधी मतों के बीच अंतर ठीक इस बिंदु है। आज के मनुष्य के लिए ये सीखना बहुत जरूरी है कि ज्ञानार्जन ईश्वर के मार्ग में होना चाहिए।
लंदन के इस्माइलिया अध्ययन केंद्र के शोधकर्ता डॉक्टर अर्जीना आर लालानी ने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं के बारे में एक किताब लिखी है जिसके नाम का अनुवाद है शियत के आरंभिक विचार। ये किताब इसी अध्ययन केंद्र ने प्रकाशित भी की है। वे इस किताब में इमाम बाकिर के विचारों की उनके काल की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करती हैं और आरंभ में उन्होंने पैगंबर इस्लाम के निधन के बाद शियों के इतिहास को बयान करने की कोशिश की है। वे उस काल के राजनीतिक आंदोलनों और ज्ञान संबंधी उन गुटों का उल्लेख करती हैं जिनके चलते उस काल में वाद शास्त्र आस्थाओं पर सवाल उठाने और सूफीवाद इत्यादि का बाजार गर्म हो गया था।
इसके बाद वे इमामत, नेतृत्व, इमाम की विशेषताएं, एक ईश्वरवाद, पैगंबर की सीरत या चरित्र और उनकी हदीसों के बारे में बात करती हैं और उस काल में इस्लामी समाज के वैचारिक वातावरण के समक्ष मौजूद समस्याओं के हल के बारे में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के कथन पेश करती हैं। यहीं से इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की भूमिका की अहमियत स्पष्ट होने लगती है और व्यवहारिक रूप से वे इस्लामी समाज की ज्ञान संबंधी गुत्थियों व सवालों के जवाबों का केंद्र बना जाते हैं। इस प्रकार से कि जब वे देखते हैं कि अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शैली में जिहाद करने की संभावना नहीं है तो ज्ञान का ठोस जिहाद शुरू कर देते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने ज्ञान संबंधी जिहाद तीन भागों में शुरू किया। पहले उन्होंने सभी को ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया, दूसरे भाग में उन्होंने ज्ञान का प्रसारण आरंभ किया और साथ ही किताबों के संकलन पर भी ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि हर काम का आधार विचारों की तैयारी और फिर विचारों को शुद्ध बनाना है। अगर हम समाज में विज्ञान का प्रसार करना चाहें तो पहले चरण में हमें लोगों को ज्ञान हासिल करने के महत्व, ज्ञानियों की महानता, ज्ञान हासिल करने के लक्ष्य और उसकी समस्याओं के बारे में बताना होगा।
इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने यह कदम इस संबंध में पैगंबर व उनके अन्य परिजनों के मूल्यवान व प्रकाशमान कथन बयान करके अच्छी तरह उठाया। उन्होंने ज्ञान हासिल करने के लिए प्रोत्साहन के बारे में कहा कि संपूर्ण परिपूर्णता तीन चीज़ों में है, धर्म को समझना, कठिनाइयों में संयम और अर्थव्यवस्था में संतुलन। उन्होंने ज्ञान अर्जित करने की शैली के बारे में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहा, ज्ञान खजाना है और उसकी चाबी सवाल है, तो सवाल करो, ईश्वर तुम पर दया करे, क्योंकि सवाल चार लोगों के पारितोषिक का कारण बनता है, पूछने वाला, गुरु, सुनने वाला और जो जवाब देता है।
इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की नज़र में केवल ज्ञान हासिल करना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके प्रसार के लिए भी कोशिश करना चाहिए। उनका एक सुंदर कथन है कि जो किसी को मार्गदर्शन की कोई चीज़ सिखाता है, उसे उस व्यक्ति की तरह प्रतिफल मिलता है जिसने उस पर अमल किया हो, और अमल करने वालों के पारितोषिक में कमी नहीं होती। इमाम अलैहिस्सलाम सभी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करते थे कि वे इस बात की ओर से अवश्य सचेत रहें कि वे कौन सा ज्ञान और किससे सीख रहे हैं। उन्होंने कुरान मजीद की इस आयत की व्याख्या में कि मनुष्य को अपने आहार को देखना चाहिए कहा कि इसका तात्पर्य यह है कि इंसान को ये देखना चाहिए कि कौन सा ज्ञान हासिल कर रहा है, और इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो किससे ज्ञान हासिल कर रहा है। दूसरे शब्दों में इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ज्ञान को आहार बताते हैं, अर्थात वो आत्मा का आहार है और इस आहार पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि वो इसे किससे और किस स्रोत से हासिल कर रहा है।
इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की कुल आयु 57 साल थी, जिसमें से अंतिम 10 साल उनकी इमामत के थे। यही 10 साल इस्लामी शिक्षाओं वह विचारों को फैलाने का अपेक्षाकृत अच्छा समय था। अतः इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके द्वारा सांस्कृतिक क्रांति व शिया मत बल्कि इस्लाम के ज्ञान के आंदोलन की आधारशिला रखना बताया जाता है। यद्यपि इस्लाम व शिया मत की शिक्षाएं उनके पुत्र इमाम जाफर सदीक अलैहिस्सलाम ने बहुत अधिक फैलाई और उनको चरम पर पहुँचा दिया, लेकिन उनकी आधारशिला इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने रखी थी। इमाम के मत से शिक्षा प्राप्त करने वालों की ओर से लिखी गई लगभग 6000 किताबें व पुस्तिकाएं दर्ज हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम कुरान मजीद और पैगंबर इस्लाम के चरित्र से पूरी तरह अवगत थे और इसी आधार पर लोगों को ज्ञान प्रदान किया करते थे और उन्हें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर लाने की कोशिश करते थे।
पैगंबर इस्लाम के परिजनों के उच्च स्थान से लोगों को अवगत कराने और जनमत को जागृत करने के लिए विरोधियों के साथ मुनाजिरा या वाद विवाद करते थे। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की एक ये शैली थी। उनके एक शिष्य अबू बसीर का कहना है कि इमाम जब अपने सुपुत्र इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के साथ तत्कालीन खलीफा हिशाम के महल से बाहर निकल रहे थे तो लोगों की एक भीड़ से उनका सामना हुआ। उन्होंने उस भीड़ के बारे में किसी से पूछा तो उसने बताया कि ये ईसाई हैं जो हर साल यहाँ इकट्ठा होते हैं। इस समय ये अपने सबसे बड़े धार्मिक पेशवा की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आकर ज्ञान संबंधी इनकी समस्याओं को सुलझाए। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में उनके बीच पहुँचे। जासूस ने ये बात हिशाम के दरबार तक पहुँचा दी। उसने कुछ लोगों को उस बैठक में भाग लेने के लिए भेजा,
ताकि वे निकट से इमाम के व्यवहार पर नजर रख सकें।
थोड़ा ही समय बीता था कि ईसाइयों का सबसे बड़ा धार्मिक पेशवा वहां पहुंच गया और बैठक में सबसे ऊंची जगह पर जा बैठा। उसने भीड़ पर एक नजर डाली। इमाम के तेज ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उसने उनसे पूछा, आप हम ईसाइयों में से हैं या मुसलमानों में से? इमाम ने उत्तर दिया, मैं मुसलमानों में से हूँ। उसने पूछा, उनके ज्ञानियों में से हो या अज्ञानियों में से? इमाम ने उत्तर दिया, मैं अज्ञानियों में से नहीं हूँ। उसने फिर पूछा कि पहले मैं पूछूं या आप पूछेंगे? इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने कहा, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ईसाइयों के धार्मिक पेशवा ने कहा, आप लोग किस तर्क से दावा करते हैं कि स्वर्ग वाले खाएं पिएंगे लेकिन उनका मल मूत्र नहीं होगा, इसका कोई प्रमाण है? इमाम ने जवाब दिया, हाँ, इसका उदाहरण माँ की कोख में पलने वाला भ्रूण है जो खाता पीता है लेकिन उसका मल मूत्र नहीं होता। उसने कहा कि बहुत विचित्र, आपने कहा था कि मैं विद्वानों में से नहीं हूँ। इमाम ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं ज्ञानियों में से नहीं हूँ, बल्कि ये कहा था कि मैं अज्ञानियों में से नहीं हूँ। उसने पूछा कि वो कौन सा समय है जो न रात में है न दिन में? इमाम ने जवाब दिया, वो सूर्योदय का समय है जो न तो रात में शामिल है और न ही दिन में। ये वो समय है जिसमें बीमारों को शिफा मिलती है। उसने कहा, अब मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। इमाम ने कहा, जो पूछना चाहो पूछ लो। उसने कहा, ये बताइए कि वे कौन से दो लोग थे जो एक साथ पैदा हुए और उनकी मौत भी एक साथ हुई, जबकि एक की आयु 50 साल और दूसरे की 150 साल थी? इमाम ने जवाब में कहा, वे अजीज व उजैर थे।
ईसाइयों के वरिष्ठ धर्मगुरु ने पूछा कि मुसलमानों का कहना है कि स्वर्ग की अनुकंपाएं कम नहीं होती, चाहे उन्हें जितना इस्तेमाल किया जाए, ये कैसे संभव है? इमाम मोहम्मद बाकर अलैहि सलाम ने कहा कि इसका स्पष्ट उदाहरण आँख है। अगर आँख से 100 चिराग भी जलाए जाएं तो पहले वाली आग में से कुछ कम नहीं होता। ये सुनकर उस ईसाई पेशवा ने धर्मगुरुओं की तरफ रुख किया और कहा कि क्या तुम लोगों ने इतने बड़े ज्ञानी को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मुझे अपमानित करो और मुसलमान ये जान लें कि वे हमसे श्रेष्ठ व अधिक ज्ञानी हैं। श्रोताओ, इसी के साथ ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान, सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
स्वतंत्रता प्रभात।
दोस्तों, ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के बारे में विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वतंत्रता प्रभात के साथ उपस्थित है कायम रिजवी और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, 20वीं शताब्दी दो विश्व युद्धों की साक्षी रही। इस शताब्दी के दौरान देशों के भीतर सत्ता की खींचतान अधिक देखने को मिली। इस शताब्दी को आरंभ हुए अभी 13 वर्ष ही गुजरे थे कि दुनिया ने प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ देखा। यह ऐसा युद्ध था जिसमें बहुत से देशों को न चाहते हुए भी इसमें भाग लेना पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध उस्मानी साम्राज्य के विघटन और इस्लामी भूमियों के अतिक्रमण का कारण बना। उस्मानी साम्राज्य का कुछ भाग जो उस समय भी अपने शासकों की तानाशाही को सहन कर रहा था, इस बार नए प्रकार के अत्याचार का शिकार हुआ।
इस्लामी जगत का ये भाग छोटे छोटे देशों में विभाजित होकर अलग हो गया और ये देश ब्रिटेन तथा फ्रांस के बीच बट गए। ब्रिटेन और फ्रांस ने, जो उस समय एकल इस्लामी सरकार के गठन से भयभीत थे, विदित रूप से इन देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की, किंतु वहां पर ऐसे लोगों को लाकर थोप दिया जो उनके हितों की देखभाल करते थे। इस प्रकार से ब्रिटेन और फ्रांस ने सीधे तौर पर नहीं बल्कि इनडायरेक्ट वे में इन देशों को अपने ही नियंत्रण में रखा। इस दौरान मिस्र ब्रिटेन के वर्चस्व में चला गया, जो क्षेत्रीय देशों में विशेष स्ट्रेटेजी का स्वामी था। इसी दौरान ब्रिटेन ने बेलफोर घोषणा पत्र जारी करके फिलिस्तीन पर जायोनियों के अतिक्रमण की भूमिका प्रशस्त कर दी।
प्रथम विश्व युद्ध में हालांकि ईरान की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन अपनी भौगोलिक स्थिति तथा उस समय के राजाओं की अक्षमता के कारण ब्रिटेन और रूस के सैनिकों के आने जाने का मार्ग बनकर रह गया था। इसका परिणाम ये निकला कि युद्ध की समाप्ति के बाद लगभग पूरा ईरान ब्रिटेन के अतिक्रमण में चला गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के दो दशकों के बाद दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की साक्षी बनी। ये युद्ध लगभग 6 वर्षों तक चली। इस युद्ध के बाद विश्व में अमेरिका और रूस दो महाशक्ति के रूप में उभरे, जबकि इस्लामी देशों को भूख, बीमारी और विनाश का सामना करना पड़ा।
इस्लामी देशों में विदेशियों की उपस्थिति का एक परिणाम ये निकला कि इन इस्लामी देशों में कुछ संगठनों और समूहों का उदय हुआ, जो मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म और इसी प्रकार के कई अन्य भौतिकवादी इज्मों का प्रचार व प्रसार करने लगे। इन गुटों में से कुछ ने तो अपनी इस्लामी पहचान पूरी तरह से समाप्त कर दी। उनका मानना ये था कि हमको मुक्ति तो पश्चिम और पश्चिमी संस्कृति से ही मिल सकती है। इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम और पश्चिमी संस्कृति के बीच तालमेल बिठाने के प्रयास किए। इतना सब कुछ होते हुए मुसलमानों के बीच ऐसे धर्म गुरु भी थे जो शुद्ध इस्लामी शिक्षाओं के प्रचार व प्रसार को ही महत्व दिया करते थे।
इस्लामी देशों में उस दौरान कुछ समाज सुधारक पैदा हुए, जिनमें से एक सैयद जमालुद्दीन असदाबादी थे जो बहुत मशहूर हुए। वे एक धर्मगुरु थे जिन्होंने ईरान और इराक में शिक्षा हासिल की थी। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय इस्लामी देशों की यात्राएं करने में गुजारा था, जहां वे सुधार करना चाहते थे। सैयद जमालुद्दीन का हमेशा ये प्रयास रहता था कि मुसलमानों को पश्चिमी संस्कृति और उनके वर्चस्व से सुरक्षित रखा जाए। सैयद जमालुद्दीन असदाबादी ने अफगानिस्तान में समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। उन्होंने धार्मिक और ऐतिहासिक किताबें भी लिखीं। सैयद जमालुद्दीन ने भारत में भौतिकवाद और वहाबियत के विरुद्ध संघर्ष किया।
वे मिस्र में एक दल बनाने में सफल रहे थे। उन्होंने जो दल मिस्र में बनाया था वो बहुत ही कम समय में फला फूला। इसको देखकर साम्राज्यवादी भयभीत हो गए और उन्होंने असदाबादी के दल को भंग करवा कर उनको मिस्र से निष्कासित करवा दिया। जमालुद्दीन असदाबादी ने मिस्र के भीतर बहुत से बदलाव पैदा कर दिए थे। उन्होंने उस देश में प्रचलित उस शैली को बदलवाने की बहुत कोशिश की, जिसके अंतर्गत राजाओं, महाराजाओं और धनवानों की प्रशंसा होती थी, किंतु आम लोगों के बारे में कोई कुछ सोचता भी नहीं था।
ईरान में सैयद
जमालुद्दीन के विचार धर्म गुरुओं के नेतृत्व में संवैधानिक क्रांति के रूप में सामने आए। इसने कुछ समय के लिए देश में राजशाही व्यवस्था को संवैधानिक व्यवस्था में बदल दिया। इसके परिणाम स्वरूप ईरान में पहली बार राष्ट्रीय संसद का गठन किया गया। हालांकि ये संसद लोकतांत्रिक न होकर अधिकतर राजशाही थी। सन 1952 में मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर ने सैन्य विद्रोह करके वहां की राजशाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसी के साथ उन्होंने साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया।
लंबे समय तक जमाल अब्दुल नासिर अरब जगत के एक ख्याति प्राप्त नेता माने जाते थे, लेकिन बाद में मिस्र ने पैन अरबिज्म और अर्थव्यवस्था में समाजवाद के झुकाव के कारण उस विचारधारा से दूर होता चला गया जो जमाल अब्दुल नासिर के दृष्टिगत थी। सन 1948 में जब ज़ायोनियों ने फिलिस्तीन की ओर रुख किया तो मुसलमानों ने यथासंभव इसे रोकने के प्रयास किए, किंतु उस समय की अरब सरकारों की अक्षमता के कारण वे कुछ भी नहीं कर पाए। सन 1967 में मिस्र, इराक, जॉर्डन और सीरिया ने एकजुट होकर इसराइल से मुकाबला किया, किंतु इसमें उनको पराजय नसीब हुई। ये पराजय जहां पर मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर के पतन की भूमिका बनी, वहीं पर बहुत से मुसलमानों के भीतर निराशा भी बैठ गई।
इन्हीं हालात में ईरान में एक वरिष्ठ धर्मगुरु के नेतृत्व में जनक्रांति की आवाज विश्ववासियों के कानों पर पड़ी जो गुम से आरंभ हुई थी। ये क्रांति उस धर्मगुरु के नेतृत्व में आरंभ हुई थी जो शुरू से अत्याचार विरोधी था। यह ऐसा धर्मगुरु था जिसने अपनी पूरी आयु इस्लाम और मुसलमानों के लिए समर्पित कर दी थी। उस महान व्यक्ति का नाम था रूहल्ला मुसवी खुमैनी, जो पूरी दुनिया में आयतुल्ला खुमैनी के नाम से जाना गया।
आयतुल्ला खुमैनी ने पवित्र नगरों कुम और नजफ से शिक्षा प्राप्त की थी। 27 वर्ष की आयु में वे मुज्तहिद बन गए थे। वे एक महान धर्मगुरु होने के साथ ही साथ बहुत बड़े संघर्षकर्ता भी थे। उन्होंने पढ़ाई के साथ ही किताबें लिखने का काम भी किया और इसके अतिरिक्त आयतुल्ला खुमैनी ने संघर्षकर्ता धर्मगुरुओं का प्रशिक्षण भी किया। ईरान में राज करने वाले पहलवी राजा का भी उन्होंने खुलकर विरोध किया। ये वो राजशाही व्यवस्था थी जो ब्रिटेन के सहयोग से आरंभ हुई थी और बाद में अमेरिका तथा इसराइल के समर्थन से आगे बढ़ रही थी।
दोस्तों, आयतुल्ला खुमैनी ने अपनी एक किताब में लिखा है कि सारे मुसलमानों को विलायत फकीह का अनुसरण करना चाहिए, जिसका अर्थ है ऐसे वरिष्ठ धर्मगुरु का अनुसरण जो वीर हो, संघर्ष करता हो और अपने समय के हालात से पूरी तरह से अवगत हो। शिया मुसलमानों के अपने समय के बहुत महान धर्मगुरु आयतुल्ला बुरुजर्दी के स्वर्गवास के बाद लोगों का ध्यान आयतुल्ला खुमैनी की ओर गया। वे लंबे समय से अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे और धर्म के प्रचार में भी आगे आगे थे।
लोगों विशेषकर ईरानियों के बीच वे बहुत अधिक लोकप्रिय हो चुके थे। उनके भाषण और लेख लोगों को अत्याचारी शासकों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया करते थे। वे लोगों को अच्छे भविष्य की शुभ सूचना देते थे। जिस समय अरब देशों और इसराइल के बीच 6 दिवसीय युद्ध हुआ था, उस समय स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने एक फतवा दिया था जिसके अनुसार इसराइल के साथ इस्लामी देशों का किसी भी प्रकार का राजनीतिक और आर्थिक संबंध हराम था। इसी प्रकार से उन्होंने इस्लामी जगत के लोगों से इसराइली उत्पादों के बहिष्कार का भी आह्वान किया था।
इमाम खुमैनी ने बाद में एक अन्य फतवा जारी किया जिसके अनुसार ईरानियों से कहा गया था कि वे अपनी ज़कात और सदक़े के पैसे को फिलिस्तीनी छापामारों को दे सकते हैं। ये पहली बार था जब किसी शिया धर्मगुरु ने इस प्रकार का फतवा दिया था। स्वर्गीय इमाम खुमैनी के नेतृत्व में फरवरी 1979 को ईरान में इस्लामी क्रांति सफल हुई थी। इस क्रांति ने दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में आशा की किरण पैदा कर दी थी।
ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के साथ ही पूरे विश्व में फैले शिया मुसलमानों के भीतर अपनी एक नई पहचान बनी। जिस पर वे गौरव करने लगे। दुनिया के अधिकांश मुसलमानों ने इसका दिल से स्वागत किया। लेबनान के शिया मुसलमानों ने स्वर्गीय इमाम खुमैनी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए एकजुट होने के प्रयास किए। बाद में वहां पर हिजबुल्लाह के नाम से ऐसी शक्ति उभरी जिससे ज़ायोनी शासन बहुत नाराज है।
ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद फिलिस्तीन में भी संघर्षकर्ता गुट उभरे। हालांकि वे सुन्नी मुसलमान हैं, किंतु स्वर्गीय इमाम खुमैनी से उनको अथाह लगाव है। इन क्रांतिकारी फिलिस्तीनियों ने इमाम खुमैनी को अपना आदर्श बनाया। ईरान भी हर प्रकार की समस्याओं के बावजूद आरंभ से फिलिस्तीनियों का समर्थन करता आ रहा है।
अब हालत ये हो गई है कि पश्चिमी विचारधारा का अनुसरण करने वाले राजनीतिक टीकाकार आए दिन ईरान की इस्लामी क्रांति की विफलता के बारे में समीक्षाएं पेश करते रहते हैं। ये लोग ईरान की इस्लामी व्यवस्था को गिराने के लिए हर रोज कोई न कोई नया षड्यंत्र भी बनाते रहते हैं, किंतु एक वरिष्ठ धर्मगुरु के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति अपने मार्ग पर आगे की ओर अग्रसर है।
सच्चाई तो यह है कि ईरान की इस्लामी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। शायद यही कारण है कि स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने ईरान की इस्लामी क्रांति को प्रकाश का विस्फोट बताया था, जो अब चारों ओर फैल चुका है। हमें हमेशा ये बात याद रखनी है कि इस्लामी क्रांति का मूल मंत्र एकजुटता के साथ विलायत फकी अर्थात वरिष्ठ धार्मिक नेतृत्व का अनुसरण करना है। ये वो आंदोलन है जिसने भी इसको भुला दिया या फिर जो इससे अलग हो गया वो विफल रहा। इस महान क्रांति की सुरक्षा के लिए हमने न जाने अपने कितने प्रियजनों को न्यौछावर किया है। निसंदेह हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे और दूसरों को इस ईश्वरीय शैली पर चलने का निमंत्रण देते रहेंगे। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, स्वतंत्रता प्रभात के अवसर पर आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी अपने मंत्रिमंडल के साथ स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर हाजिर हुए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका खत्म हो रहा है। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज़। शुभरात्रि।